ड्रामा का पाठ सभी को पक्का है। हमने पहले दिन ही बताया था कि ब्राह्मणों के प्रोग्राम में पल पल में परिवर्तन होता रहता है और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आज आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट मुरली क्लास के बाद कुछ और हुई थी और सम्मुख आकर विराजमान कोई और हुए हैं, है ना। और इसमें भी कई सारी बातें हो गई कि टीचर बहनों की क्लास को कोई और आके अटेंड करने वाले हैं हिस्ट्री हॉल में और सिर्फ भाई बहनें यहाँ बैठेंगे। फिर उस हिसाब से हमने स्पीकर तय किया, फिर उसमें भी और सारी बातें हो गई, फलाना नहीं फलाना, फलाना नहीं फलाना, फलाना नहीं फलाना, और फाइनली जो फाइनल तय हुआ वो आपके सामने विराजमान है। तो आपको स्वीकार है, हाँ एक हाथ उठा लो स्वीकार है तो बहुत अच्छा। तो हम सब के बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। इस कलयुग के अंदर में भी जो धरनी देवभूमि कहलाती है यानी कि हिमाचल प्रदेश, उस हिमाचल प्रदेश से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपको 1995 में यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और बहुत जल्द यानी कि 1998 में मधुबन में आकर के अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित किया। मधु बनाने से पहले आपको लौकिक जाप का अनुभव है जो आपने अमृतसर पंजाब में की 14 वर्षों तक सोनी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के रूप में, और जब यहाँ आए तो यहाँ सेवा का स्वरूप बदल गया। आप जिस सेवा में संलग्न है वो है मीडिया, पब्लिक रिलेशन, सोशल विंग और साइट सीइंग ऑफिस, ये सब आपके सेवा के अंदर आता है। और यहाँ मधुबन में जो स्वपुरुषार्थ का ग्रुप है उसके आप बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। रविवार की मुरली भी प्रायः आप रिवाइज कराते हैं हर संडे को रात को, और ऐसे भी आप कराते रहते हैं। हमारे पास जो छोटे लाल भाई है जो सिक्योरिटी आंगन की सेवा करते हैं, लेकिन प्रायः देश भर में सेवार्थ भ्रमण करते रहते हैं, और उनकी सेवा होती है रात की क्लास का स्पीकर फिक्स करना, और जब वे प्रायः एब्सेंट रहते हैं तो वो भी जिम्मेवारी आप ही संभालते हैं हमारे सुशील भाई। तो आज हमारे बीच में हमने इनसे कहा, क्योंकि मुरली रिवाइज कराते हैं संडे की, तो कैसे मुरली रिवीजन करनी होती है इस विषय पर प्रकाश डालते हुए एकांत और एकाग्रता को भी उसमें समावेश कर देंगे। तो सुनते हैं आदरणीय सुशील भाई जी।
ओम शांति। अभी हम सब ने गीत सुना कि मन के आंगन में ज्ञान अमृत बरसता रहता है, तो ये ब्राह्मण जीवन हमेशा ज्ञान वर्षा से उत्साहित रहता है। अगर निरंतर ज्ञान वर्षा होती रहे तो, जैसे बरसात होती है तो चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, और हरियाली मन को अच्छी लगती है। सूखा सूखा अच्छा लगता है? नहीं, हरियाली अच्छी लगती है। तो बाबा भी हमको ज्ञान से हरा भरा रखते हैं। हर पल बाबा कहते बुद्धि में ज्ञान अमृत टपकता रहना चाहिए। जितना टपकता रहेगा ज्ञान अमृत, उतना हम रिफ्रेश रहेंगे, चार्ज रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, व्यर्थ की बातों से मुक्त रहेंगे। जो आज बाबा ने कहा, नहीं तो स्वप्न क्या करते हैं, तड़फाते हैं। अधिकतर तो ब्राह्मण जीवन में सभी आचार संहिता जो मर्यादाएं हैं उन पर ध्यान तो रखते हैं सभी प्राय, सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मेडिटेशन भी करेंगे, मुरली भी सुनेंगे, ज्ञान भी सुनाएंगे, खान पान का परहेज भी रखेंगे, जो धारणाएं हैं उन पर भी ध्यान रहता है। लेकिन स्वप्न हमारे हाथ में है। बाबा कहते हैं स्वप्न हमारे साकार जीवन का आधार है, उनको परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन लंबे समय के अभ्यास के बाद, क्योंकि जो भी हमने कर्मों के बीज बोए हुए हैं, स्थूल रूप से हम उनका सामना कर लेते हैं, उनसे मुक्त होने की युक्तियां निकाल देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से माया प्रहार करती है हमारे मन के ऊपर, जो आज बाबा ने कहा माया अपना सूक्ष्म प्रभाव डालती है, तो वो स्वप्न के रूप में आती है। लेकिन अगर पुरुषार्थ को हम थोड़ा और शक्तिशाली कर दें और उसके लिए स्वयं पर थोड़ा निगरानी रखें, अटेंशन रखें, तो स्वप्नों की दिशा को चेंज किया जा सकता है। सारे दिन में हमारी दिनचर्या एक्यूरेट रहती है, लेकिन कभी कभी एक्यूरेट नहीं भी रहती है। अगर हम जो प्लान बनाते हैं, सवेरे तो अमृत वेले बाबा के सामने हम अच्छे अच्छे संकल्प कर लेंगे, आज ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे कोई ऐसी वैसी परिस्थिति आ जाती है तो सारा पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर हमें लंबे समय की साधना का बल, ज्ञान चिंतन का बल काम में आता है। जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआएं काम आती हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी धारणा का मुख्य बिंदु है वो है ज्ञान का बल। बिना ज्ञान के जीवन में प्रगति नहीं है, और बिना ज्ञान के हम साधना करते हैं तो साधना में बल नहीं आता है। इसलिए साधना करते समय भी ज्ञान के साधनों का उपयोग करना अति आवश्यक है। खाली हम एक ज्योति बिंदु को याद करते रहेंगे बिना अर्थ तो भी हमारे में वो ताकत नहीं भरेगी, शक्ति नहीं भरेगी। इसलिए जिस भी हम सुमान पर चिंतन करते हैं उसका विस्तार चाहिए। जैसे रात्रि भी क्लास सुना हम सबने कि चिंतन आवश्यक है, सुमान का चिंतन। सुमान एक विमान की तरह है जो हमको उड़ाता है, लेकिन उसको रटना नहीं है, उस पर हमको गहरा चिंतन चाहिए। एक तो जो भाई जी ने कहा 108 बार लिखो, वो हमारा प्रारंभिक पुरुषार्थ है, प्राथमिक पुरुषार्थ है। उससे भी हम माया से सेफ रहते हैं, उसमें भी एनर्जी है, शक्ति है, ताकत है, बल है, लेकिन उससे भी हमको आगे थोड़ा कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि समय और परिस्थितियों को देखते हुए जो भी हम सांसारिक हलचल देखते हैं, चाहे वो प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, चाहे वो हमारे अपने ही स्वभाव संस्कार हमारे सामने आते हैं, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या राजनीतिक तरीके से हलचल है जिसका हम सबको सामना करना पड़ता है, उससे हम भाग नहीं सकते, क्योंकि हम संसार की हर आत्मा से जुड़े हुए हैं। हमारा हर संकल्प संसार को प्रभावित करता है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो व्यर्थ है, साधारण है, वो हमें भी प्रभावित करता है, प्रकृति को भी प्रभावित करता है, संसार की हर आत्मा को प्रभावित करता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम क्या हो, उद्धार मूर्त, आधार मूर्त हो, बेस है हम संसार के। अगर बेस ही, फाउंडेशन ही कच्चा है तो उन संकल्पों का प्रभाव सारे संसार को भी रुलाएगा, तड़फाएगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हंसते हो तो संसार हंसता है, खुश रहता है, तुम बच्चे रोते तो संसार भी रोता है। हम संसार की कौन सी आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। तो आज की मुरली के ऊपर जो मंथन का विषय, एकाग्रता कैसे बढ़ती है, मंथन करने से एकाग्रता बढ़ती है। तो आज का जो मुख्य विषय रहेगा कि कैसे हम मंथन करें। मंथन करना अगर हमने सीख लिया तो योग बहुत सहज हो जाएगा। जो बाबा ने कल भी कहा स्लोगन में, क्या कहा था, हाँ जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। हाँ, ऐसे सहज योगी बन जाएं जो हमको देकर दूसरे का योग लग जाए। तो मंथन जो ये सहज योग का पहला बिंदु है। कोई भी हम महावाक्य जो अनुसरण करते हैं, श्रवण करते हैं, एक भी अगर महावाक्यों को पकड़ लिया जाए और सारा दिन उस पर चिंतन किया जाए तो उसके हम अनुभवी बन जाते हैं। एक है मुरली के अनेक पॉइंट याद कर लेना, उससे भी हम बहुत सारी बातों से सेफ रहते हैं। लेकिन एक है मुख्य, एक बिंदु पर अगर हमने अच्छी तरह चिंतन कर लिया तो वो हमको कहीं भी कभी भी काम में आता है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है, हमारी अपनी संपदा संपत्ति बन जाती है, उसके हम अधिकारी बन जाते हैं, अथॉरिटी आ जाती है, उसके हम अनुभवी बन जाते हैं। इसलिए किसी भी एक बिंदु पर पकड़कर उस पर पूरी मास्टरी करनी है, और इसके लिए सबको खुली छुट्टी है, कोई अंकुश नहीं है। तो आज का जो मुरली का मुख्य बिंदु था बानप्रस्थ अवस्था। बाबा ने कहा अगर अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो क्या करो, क्या करो? निरंतर बाबा को याद करो। आज की मुरली में क्या था? खुले दिल से समाचार अपना बाबा को सुना दो, खुले दिल से। इसलिए कहा सच्चे दिल पर साहब राजी। तो खुले दिल से बाबा को समाचार सुनाना है, क्योंकि गलतियां तो हम सबसे हुई हैं और होती भी रहती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम गलतियों से बिल्कुल किनारे हो गए हैं। सारे दिन में बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। सबसे बड़ी गलती तो कौन सी होती रहती है? बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कहां भूलता सारा दिन ये देह। जो बाबा कहते निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, देही अभिमानी स्थिति में रहो, लेकिन सारा दिन मत तो हम देह में उलझे रहते हैं। देह के संबंध, देह की स्मृतियां, देह के पदार्थ, देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारा दिन चिंतन चलता रहता है, और इस चिंतन से हम छूट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना देह के पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। देह भी बड़ा जरूरी है, लेकिन चिंतन की दिशा को चेंज करने की जरूरत है। तो जो देह है इस देह का विशुद्धिकरण करना है, क्योंकि ये देह साधारण नहीं है। बाबा कहते तुम्हारी सबकी अभी बानप्रस्थ अवस्था है। बानप्रस्थ अवस्था अर्थात क्या? हाँ जी, अब घर जाना है। बाबा ने कहा अब नाटक पूरा हुआ है, लेकिन बाबा ने कहा घर जाने का ख्याल तो नहीं आता है, जाना तो है ही है। हाँ जी, ईश्वर की गोद में तो छोड़ के क्यों जाते हो, लेकिन छोड़नी तो पड़ेगी। एक दिन तो ड्रामा का पूरा पार्ट पूरा हो जाएगा, नाटक पूरा होगा, और अंत में जाना तो है ही है। घर के दरवाजे खुले हैं। पिछले थे, पिछले संडे की मुरली में था ना, ऊपर कोई पर्दा नहीं है, मिलन के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। तो बानप्रस्थ अवस्था में देखेंगे, अगर हमारी बानप्रस्थ अवस्था है तो क्या वो हमारे में वो चिन्ह, वो निशानियां, वो सिंबल दिखाई देते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति बानप्रस्थ हो जाता है तो उसका सबसे क्या होता है, धीरे धीरे बैराग आ जाता है। क्यों बैराग आता है? क्योंकि लंबे समय से उसने जीवन में अनुभव कर लिए, उस जीवन के दौर से वो गुजरा है कि उनमें सुख नहीं है, वो विनाशी सुख है, और उस विनाशी सुख के पीछे दुख ही दुख समाया हुआ है, दुखों का अंबार लगा पड़ा है। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा ना कि सर्व विकारों को विदाई देने वाले हो तुम, कभी कभी भी पवित्र नहीं सदा पवित्र। तो जो विकारों ने हम सबको दबा के रखा हुआ है, विकारों का बोझ जिससे आत्मा दबी पड़ी है, आत्मा बोझिल हो गई है, दुखी हो गई है, संतरस्त हो गई है, उससे छूटने के लिए हमको ये समर्थ स्मृतियों का खजाना हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास जितनी भी संपत्ति होती है उसको वो बांट देते हैं। तो पहले तो हमको ज्ञान की संपत्ति अर्जित करनी है। अगर हमारे पास ज्ञान की संपत्ति होगी, ज्ञान धन होगा, तो उस संपत्ति जितना हम बांटेंगे उतना हमारी संपत्ति बढ़ती जाएगी, उतना हम दूसरों की दुआएं अर्जित कर सकेंगे। तो सबसे पहले है, अगर हमारी बानप्रस्थ अवस्था है तो ये नहीं है कि हमको सारा कुछ भूल जाना है। ये तो हमारा बाबा कहते मरजीवा जन्म है, एक नया जन्म हुआ है। पुरुषोत्तम संगम युग ही एक नया जीवन है, ये उत्तम से उत्तम जीवन है, ये ब्राह्मण चोटी जिसको कहा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की संपत्ति हमारी बुद्धि में भरी रहनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। अगर बुद्धि में थोड़ा सा भी स्थान रखा है खाली, तो जहां खाली रखा होता है तो वहां क्या होता है, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, जाले लग जाते हैं, विकारों के जाले लग जाएंगे। तो ज्ञान की संपत्ति ज्यादा से ज्यादा अर्जित करनी है। जब भी हम बैठते हैं, फुर्सत में होते हैं, ऐसा नहीं कि हम मेडिटेशन के समय ही चिंतन कर सकते हैं। सारे दिन में हमको देखना है हमारा समय कहां कहां जा रहा है। जहां हमारा समय वेस्ट जा रहा है उस समय पर हम ज्ञान की संपत्ति को अर्जित करें। चिंतन करना है कि मेरी बुद्धि में कौन कौन सा ज्ञान है अभी भी। जो बाबा ने कहा तुम बच्चे इस जीवन के आदि मध्य अंत को समझ के हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, सारे ड्रामा का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, सारे वर्णों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तो बुद्धि को दौड़ाते रहना है, कोई ना कोई चिंतन अपने संस्कारों का, अनादि आदि संस्कारों का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। जितना हम ज्ञान को बुद्धि में दौड़ाते जाएंगे, बाबा कहते हैं ना बुद्धि की रेस है ये। तो ये रेस क्या है? रेस माना कौन सी दौड़ है? बुद्धि को बिजी रखने की दौड़ है ये, यात्रा है। इस यात्रा में थकना नहीं है, ना ही इस यात्रा में रुकना है। तो हमें चिंतन रोकना नहीं है, चिंतन की धारा हमारी निरंतर बहती रहनी चाहिए। बहता पानी ही साफ होता है, पानी रुक गया तो गंदा हो जाएगा, वहां बदबू आ जाएगी। इसलिए ज्ञान का चिंतन हमेशा हमारा चलता ही रहना चाहिए। ज्ञान एक आत्मा को साफ करने का शक्तिशाली शस्त्र है, वो शक्तिशाली स्रोत है। इसलिए सबसे पहला हमारा ज्ञान जो फाउंडेशन है, ये पवित्रता भी बाद में है, भगवान से प्रेम भी हमारा बाद में बढ़ेगा, योग की भी हमारा बाद में लेगा, धारणाएं भी हमारी बाद में मजबूत होंगी, परिवार से भी प्यार बाद में बढ़ेगा। लेकिन जब पहले हमको सबका ज्ञान, समुचित ज्ञान, एक्यूरेट ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा कि हम सभी एक ही बाबा के बच्चे हैं, एक ही घर से आए हैं, एक ही परिवार के हैं, एक है ऊपर ऊपर से स्मृति, लेकिन एक है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उस पर हमारा निश्चय हो गया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवान के ऊपर तो हमारा निश्चय हो गया है, चलो स्वयं के ऊपर भी निश्चय हो गया कि हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, हम देवी देवता घराने की आत्मा है, महान आत्मा है, मास्टर सशक्तिवान आत्मा है, यह भी निश्चय हो गया। ड्रामा पर भी निश्चय हो गया, परिवार पर भी निश्चय हो गया, लेकिन एक और बात पर निश्चय, किस पर? ज्ञान पर निश्चय। ज्ञान पर पूरा पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि ज्ञान, आज बाबा कुछ बोलेंगे, कल बाबा कुछ बोल देते उसी बात के बारे में, तो उस पर भी हमारा निश्चय चाहिए। और ज्ञान पर निश्चय होगा तब हमें अपने सम्मान पर निश्चय होगा। अगर ज्ञान पर भी पूरा निश्चय नहीं है तो सम्मान भी हमारा लड़खड़ाता रहेगा। इसलिए बैठेंगे कोई सम्मान में, मैं विजयी आत्मा हूं, अब कुछ 5-7 बार उसको दोहरा तो लिया है, लेकिन विजय कहां चल गई हमको छोड़ के उसका ही नहीं पता चलता है। तो ज्ञान को बुद्धि में दौड़ाते रहना है। तो सबसे पहली बात है, ज्ञान की संपत्ति हमको बढ़ाते रहना है। ज्ञान हमारे पास कम नहीं होना चाहिए, बुद्धि रूपी झोले में ज्ञान रत्नों से बाबा कहते खेलते रहो, ज्ञान के हीरे मोती। तुम्हारा जन्म हीरे तुल्य जन्म है, ये कौड़ी तुल्य थे, अब हीरे तुल्य है। हीरे पर किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, भगवान के हम अमूल्य हीरे हैं, और कोई ऊपर दाग रहे तो अच्छा लगेगा? तो देखना है हमारे ऊपर कौन कौन सा दाग अभी भी है, चाहे वो दृष्टि का है, नकारात्मक दृष्टि का, भिखारी दृष्टि का, व्यर्थ संकल्पों के दाग, या देह के संबंधों का आकर्षण, या दैहिक आकर्षण, दैहिक सौंदर्य, ये कई प्रकार के आत्मा के ऊपर दाग लगे हुए हैं। तो ये दाग से हम तभी मुक्त होंगे जब हमें ज्ञान का चिंतन करने की आदत पड़ जाएगी। अगर ज्ञान का चिंतन करने की आदत नहीं है तो हम खुद ही असमंजस में रहेंगे, खुद ही अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, खुद ही विकारों की गर्त में धकेलते रहेंगे। तो ज्ञान की संपत्ति अर्जित करनी है, और जितना हम ज्ञान की संपत्ति अर्जित करेंगे उतना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे। क्योंकि ज्ञान क्या है, कहां से आ रहा है? ये विदेही बाप के द्वारा मिल रहा है, तो विदेही बाप का ज्ञान हमको विदेही बनाने में बहुत सहायक रहेगा। जैसे अगर हम देहधारी का चिंतन करते हैं तो हमारी अवस्था भी मन बुद्धि में क्या घूमता रहता है, सारे देहधारी घूमते रहेंगे, उसकी देह ही घूमती रहेगी, उसके देह के संस्कार ही घूमते रहेंगे, उसकी देह का सौंदर्य ही घूमता रहेगा, उसके देह के संस्कार, देह की आदतें, उसका खाना पीना, वही संस्कार हमारे अपने बनते जाएंगे। अगर हम विदेही अवस्था का अनुभव करते जाएंगे तो हमारे संस्कार भी वैसे बनेंगे। तो देही अभिमानी अवस्था की ओर ये ज्ञान हमको ले जाता है अपने आप। अगर मैं सोचूं मैं देही अभिमानी अवस्था में स्थित हूं, होगा ही नहीं वो, क्योंकि जब तक हमने ज्ञान का चिंतन ही नहीं किया तो बिना चिंतन के वो अवस्था कैसे बनेगी। तो कोई भी हम ज्ञान का बिंदु चिंतन करते हैं, ये चिंतन हमको अशरीरी अवस्था की तरफ ले जाता है, देही अभिमानी अवस्था की तरफ ले जाता है, और ये चिंतन ही हमारे मन को एकाग्र करता है, ये चिंतन ही हमको अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त करता है। तो सबसे पहले ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की संपत्ति को हमको बढ़ाना है। दूसरी बात, जितना ये संपत्ति बढ़ती जाएगी उतना हमारा मन साइलेंस अवस्था में जाएगा। नहीं तो संसार की बातों में मन हमारा उलझा रहता है, संबंधों में उलझा रहेगा। जो भी सारे दिन में छोटी मोटी बातें आती रहती हैं उनमें रस मिलेगा, उसमें रस थोड़ा सा भी अगर रस बैठता है तो हमारा मन बार बार उधर ही जाता है। एकाग्रता होगी कहाँ? फिर मन बार बार उन्हीं बातों में उन्हीं का चिंतन करते रहेगा, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो इसका हमको अभ्यास करना है। चिंतन ही हमको साइलेंस की तरफ ले जाएगा और जितना हम साइलेंस अवस्था में रहते हैं, साइलेंस मौन नहीं है, मौन रहना साइलेंस नहीं है। साइलेंस अर्थात जिससे हमारी अवनति होती है, आत्मा का पतन होता है, उससे हमको मुक्त होने का प्रयास करना है। जो बातें हमारे काम की नहीं है वहां हमें ठहरना नहीं है। हाँ, सुनने में तो आएंगी बातें, ऐसा नहीं हम किनारा करेंगे। अब फैमिली में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी अपनी अपनी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उनका मुंह तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन उन बातों का हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं तो बच्चे कुछ भी करते रहते हैं, उसका वो नाराज नहीं होते। उसे कोई बच्चा दाढ़ी खींच रहा है, कोई सिर पर चढ़ रहा है, कोई टोपी खींच रहा है, कोई कपड़े खींच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनके मन पर उनका कोई असर नहीं होता है। तो हम तो कौन है? पूर्वज हैं। तो ये पूर्वजपन की स्थिति भी तब आएगी जब हम ज्ञान का चिंतन करेंगे और हमारी अवस्था साइलेंस रहेगी। और साइलेंस में बहुत बड़ा बल है। का क्लास सुनी होगी ना साइलेंस की? किसने कराई थी? कितने बातें सुनाई थी साइलेंस की, याद है सभी को? याद है कौन कौन सी बातें सुनाई थी? इससे भी एकाग्रता बढ़ेगी, मन को पीछे ले जाना। आप जब से यहां मधुबन में आए हैं, बीच बीच में ये भी कर सकते हैं, कल या परसों से मधुबन में आए हैं तो तब से लेकर अभी तक क्या क्या किया उसका अवलोकन करो, किस किस से मिले उसका अवलोकन करो, कहां कहां बैठे उसका अवलोकन करो, इससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। क्या क्या खाया उसका चिंतन करो, किससे हमारा थोड़ा मन मुटाव हुआ उसका चिंतन करो, कहां कहां बैठे योग में उसका चिंतन करो, कहां योग हमारा शक्तिशाली रहा उसका चिंतन करो, कहां हमको नींद आ गई, सुस्ती आ गई उसका चिंतन करो, तो भी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। बाकी एकाग्रता की शक्ति सभी में है। कोई है जिसकी एकाग्रता में कमी है? है। जब हम व्यर्थ का चिंतन करते हैं तब कैसे एकाग्रता बढ़ जाती है? सबसे ज्यादा एकाग्रता तो हम ब्राह्मण आत्माओं में है। अगर किसी का परचिंतन करना हो उसमें कितना रस बैठता है, घंटों घंटे बीत जाते हैं, तब कैसे हमारा चिंतन चलता है? तो शक्तियां हमारे पास में हैं, लेकिन हमको उनका उसकी दिशा चेंज करनी है। बाबा ने तो आते सारा वरदान दे दिया, सारे खजाने हमको दे दिए, सारी शक्तियां दे दी, लेकिन उन शक्तियों का हम समय पर उपयोग नहीं करते हैं, उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उनका हम दुरुपयोग करते हैं। और परमात्मा में शक्तियां जो मिली हैं उनका दुरुपयोग करने का भी प्रभाव हमारे अवस्था पर पड़ता है। एक बार हमको परचिंतन करने की आदत पड़ गई तो बार बार मन फिर उधर ही जाएगा और उनसे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब अनुभवी होंगे, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लंबे समय से तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर 4-5 दिन भी 8-10 दिन भी अगर गाड़ी पटड़ी से उतर गई, उसको पटरी पर लाना फिर बड़ा मुश्किल होता है, मेहनत भरा काम होता है, क्योंकि हमारे हर संकल्प में सिद्धि समाई हुई है। जो भी हमारे संकल्प हैं उसमें परमात्म शक्ति समाई हुई है, क्योंकि हमारे पर नजर किसकी पड़ी हुई है? स्वयं भगवान की नजर हमारे पर पड़ी हुई है। तो जो भी हम संकल्प करते हैं उन संकल्पों में सिद्धि स्वतः है, उन संकल्पों में शक्ति समाई हुई है, उन संकल्पों में बल है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे हर संकल्प में सिद्धि को वरदान मिला हुआ है। हर संकल्प सिद्ध होगा, चाहे वो नेगेटिव करते हैं चाहे पॉजिटिव करते हैं। मन इच्छित फल प्राप्त करने का संकल्प हमको मिला हुआ है। बाबा कहते हैं ना तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। कल्प वृक्ष होता है ना सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, संसार में तो ऐसा माना जाता है। तो हम कौन है? कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अब जड़ें जो संकल्प करेंगी तो वो संकल्प तो फलीभूत होगा ही होगा ना, चाहे नेगेटिव करते हैं तो भी फलीभूत होगा, कमजोर करते हैं संकल्प तो भी फलीभूत होगा। कहते हैं ना, एक कहानी सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति था बहुत आलसी था, पेड़ के नीचे बैठ गया, भूख लगी थी बहुत। अब वो उस पेड़ का, उसको पता नहीं था कौन सा पेड़ है, वो बैठ गया नीचे। अब उसने सोचा भूख बहुत लगी है, क्या किया जाए, बहुत गर्मी पड़ रही है, प्यास भी बहुत लगी है, बहुत लगी हुई है। तो सोचा अगर मुझे, काश मुझे पानी मिल जाए। अब पानी की बोतल आ गई उसके पास अपने आप, क्योंकि वो कल्प वृक्ष का था, तो मन इच्छित फल, उसकी मन इच्छा पूरी होगी। पानी पिया उसने तो बड़ा खुश हो गया उसका तो अनेक। फिर दूसरा, कितना अच्छा पानी आ गया। अच्छा उसने सोचा शरबत आ जाए तो अनेक प्रकार के शरबत आ गए, रूह अफजा फलाना फलाना कोई भी शरबत आ गया, तो उसको और मजा आ गया कि तो सारे शरबत भी आ गए। उसने सोचा काश बहुत अच्छा सा भोजन आ जाए, तो भोजन भी आ गया, बड़ा खुश हो गया वो तो, क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ था, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो भोजन भी आ गया। थोड़ी देर उसने सोचा, थोड़ी देर के बाद, ये तो यहां बैठने से मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं। तो उसने जो भी संकल्प किया वो सारी सिद्धियां उसको मिलने आरंभ हो गई। एक अच्छा सा महल भी बन गया सामने, फिर उसकी इच्छा हुई शादी की, वो भी सामने आ गया, सब कुछ आ गया, बच्चे भी हो गए, देखते देखते सारा कुछ ही हो गया। तो बोला कहीं भूत ना आ जाए इसके ऊपर, जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं, इस पेड़ पर कोई तो है, कहीं इसके ऊपर भूत ना बैठा हो, अच्छा कहीं वो मुझे खाने ना आ जाए। तो जैसे संकल्प किया तो भूत उसको खा के भी चला गया। तो हम सब कौन है, कल्प वृक्ष के जड़े हैं, फाउंडेशन है, अर्थात सारे संसार की आत्माएं हर हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। तो जो कल्प वृक्ष संकल्प कर, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के संकल्प करते हैं, उन संकल्पों का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। तो संसार की आत्माएं हम सबकी छत्रछाया के नीचे बैठी हुई है। एक है स्वयं के लिए योग करना, अभी वो टाइम चला गया। अब इस समय ऐसा है कि हमको संसार की सर्व आत्माओं के लिए योगदान देने का समय है। हम सब ने अभी तक जितना पुरुषार्थ करना था ना, वास्तव में वो कर लिया अभी, और अभी जो टाइम है ये हमको वास्तव में बोनस में मिला हुआ है। अभी जो अवस्था है हमारी निराकारी अवस्था है, सबसे पहले हमको जो ज्ञान मिला, साकार में बाबा आते थे, जब तक शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए उसको क्या कहा जाता था, साकार मिलन। उसके बाद 1969 से लेकर 2017 तक कौन सा मिलन था, अव्यक्त मिलन। उसके बाद अभी कौन सा मिलन है, अव्यक्त में भी अव्यक्त मिलन है अभी, और इस अव्यक्त मिलन में ही सारे संसार की सेवा होनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उसके बाद सेवाओं का स्वरूप बदल गया, सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसके बाद दादी जी अव्यक्त हुए, दीदी अव्यक्त हुए, तो सेवाएं और बढ़ती गई। विशेषकर से जो गोल्डन जुबली थी उसके बाद सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ। अभी जो है सेवाओं की जिम्मेवारी किसके ऊपर है, ऐसा नहीं कि जो आत्माएं चली गई हैं, दीदी दादियां, उन्होंने बहुत सेवा कर दी है, अभी कुछ तो हमको भी सेवा करनी पड़ेगी ना। तो अपने लिए योग हमने आज तक बहुत कर लिया, अभी साथ साथ में संसार की हर आत्माओं को ठिकाना देने की आवश्यकता है। अगर हम खुद ही ठिकाना बटते रहेंगे, सारा दिन ठोकरें खाते रहेंगे, तो दूसरों को ठिकाना कहां देंगे। तो अभी सारा समय स्वयं के प्रति नहीं है, अभी दूसरों के प्रति है। सारे संसार को शक्ति भरने का टाइम है। तो जब भी हमको मौका मिलता है, छोटे छोटे अपने गोल तय करने हैं, 2 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, बैठ जाओ याद में और बैठ जाओ सर, जैसे सारे संसार की आत्माएं सामने बैठी हैं। अब ये एक प्रयोग करेंगे, जहां हम बैठे हैं यही सोचेंगे हम, आज की मुरली में था कि हम बाबा की शीतल गोद में बैठे हैं। तो इस मेडिटेशन हॉल को मेडिटेशन हॉल नहीं समझना, ये परमात्मा की शीतल गोद है, और इस गोद में संसार की सभी आत्माएं बैठी हुई हैं, और इस शीतल गोद से परमात्म प्यार का झरना बह रहा है, जिस झरने के नीचे संसार की सर्व आत्माओं को अनेक विकारों से मुक्त कर रहे हैं। संसार की आत्माएं विकारों से मुक्त हो रही हैं, संसार की आत्माओं में परमात्म शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी 1 मिनट इसी संकल्प के साथ संसार की सर्व आत्माओं को परमात्म शक्तियों से भरपूर करेंगे, चार्ज करेंगे। तो सभी 1 मिनट परमात्म प्यार में बैठेंगे। इसी मेडिटेशन हॉल को परमधाम समझ लीजिए, परमात्मा की गोद समझिए, और संसार की सर्व आत्मा को इमर्ज करके उनको परमात्म शक्तियों से भरपूर करेंगे। ओम शांति। तो बीच बीच में प्रयोग करना है, घर में बैठे हैं, लौकिक में या सेवा केंद्र में हैं, उसको घर नहीं समझने का, क्या समझेंगे? सेवा केंद्र तो समझना है, उससे भी आगे क्या समझेंगे? उसको परम धाम समझ लो अभी, क्योंकि सारे अपने संकल्पों को चेंज करने का टाइम आ गया है। सेवा केंद्र भी बहुत समझ लिया, स्थान भी बहुत समझ लिया, लौकिक घर भी समझ लिया, अब उस घर में परम धाम की एनर्जी भर देनी है। तो यहां बैठे बैठे अभी फिर से एक मिनट के लिए जहां भी हम रहते हैं लौकिक में, उस घर को, सेवा केंद्र को परम धाम समझ के पूरी एनर्जी से भर दो, जैसे मैं आत्मा भी परम धाम से अवतरित हुई हूं और उस घर के दरवाजे पर खड़ी होकर या घर के आंगन में सामने खड़ी होकर वरदानी मूर्त स्थिति में परमात्म शक्तियों से भरपूर कर रही हूं। जो भी आत्माएं उस समाज मोहल्ले में रहती हैं, उस घर में आएंगी तो सारे दुख दर्द भूल जाएंगी। वो घर जो है परमात्म शक्तियों से चार्ज हो रहा है, वहां निरंतर परमात्म प्यार का झरना बह रहा है। कोई भी आत्मा आती है तो वो जैसे अपने दुख दर्द परेशानियों से मुक्त हो जाती है। एक मिनट उसी संकल्प के साथ जिस लौकिक स्थान पर रहते हैं, लौकिक अलौकिक, उसको परमात्म शक्तियों से चार्ज करेंगे। ओम शांति। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर ऐसे अपने आप को उपराम बनाने का अभ्यास करना है, ऐसे भी एकाग्रता बढ़ेगी। एकांत का अर्थ क्या है? एकांत अर्थात एक तो है एक के अंत में समा जाना, एक है एक ही संकल्प में टिक जाना। चाहे वो हम सोमान का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, चाहे वो साकाश दे रहे हैं, पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से उस पर पूरा फोकस लगा देने का। तो जो बाबा कहते हैं मुरली मंथन, जो हम चिंतन कर रहे थे बानप्रस्थ अवस्था में, तो आज की मुरली में बाबा ने एक बानप्रस्थ अवस्था के लिए और बात कही कि बानप्रस्थ अवस्था में क्या मिलता है? जब मनुष्य बानप्रस्थ होता तो कहां चला जाता है? गुरुओं के पास। क्या मिलता है उसको? मंत्र मिलते हैं। तो बाबा ने हम सबको कौन कौन से मंत्र दिए? मन मना भव। और कौन सा मंत्र दिया है? मध्याजी भव। और कौन सा मंत्र दिया है? आत्मा समझ बाप को याद करो। और कौन सा मंत्र दिया है? ऐसे 100 मंत्र हमारे पास होने चाहिए। अपने मंत्र खुद ही मुरलियों से तैयार करने हैं। हाँ, 5 रूपों का मंत्र दिया और सुदर्शन चक्रधारी बनो, ये मंत्र दिया और हाँ जी पूज्य से पुजारी, ये मंत्र दिया है। अपने स्वरूपों को याद करो। और कौन सा मंत्र दिया है? हाँ जी मध्याजी भव और त्रिकालदर्शी भव। तो ऐसे अनेक सारे मंत्र बाबा कहते हैं सुमान की माला फेरते रहो, माला वो पहने रहना चाहिए। जैसे सजनी कौन सी अच्छी होती है? जो हमेशा आभूषणों से सजी हुई हो। तो हम बाबा की कौन है? हम बाबा की सजनियां हैं। तो हमको सजे रहना चाहिए कि नहीं सजनी चाहिए? तो ज्ञान के आभूषण हमेशा हमारे गले में पड़े रहने चाहिए, सोमान की माला हमारे गले में पड़ी रहनी चाहिए, सिर पर जिम्मेवारी का ताज लगातार वो निरंतर दिखाई देना चाहिए। जैसे बाबा टीवी ऑन करे तो उसकी सजनी कैसे दिखाई दे? बाबा उस पर लट्टू हो जाए एकदम। काल की मुरली में था ना कि घर में जाते हैं तो लट्टू हो जाते हैं, तो बाबा भी हमारे पर लट्टू हो जाए तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमेशा हमको सजे सजाए रहना है। हम भगवान की सजनियां हैं, इससे बड़ी खुशी और कौन सी है ना। तो सजनी साजन के साथ कैसे रहती है? एकदम सच्चे दिल से रहती है, साफ दिल रहती है, एक व्रत रहती है। अच्छा, साजन अगर विदेश में चला जाए तो सजनी साजन को लेटर लिखेगी ना? बाबा क्या कहते हैं, बच्चे घर में जाते हैं 6-6 महीने चिट्ठी नहीं लिखते हैं। फिर बाबा क्या सोचते हैं, कहीं मर ना गया हो तो हमको चिट्ठी लिखनी चाहिए ना। अच्छा, तो साजन को अगर चिट्ठी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि ज्ञान को ना थोड़ा रमणीक बनाना है। कैसे लिखेंगे? हम सभी भगवान की सजनी हैं तो कैसे चिट्ठी लिखेंगे भगवान को? हे मेरे प्रिय साजन, आगे मेरे प्राणेश्वर का परसों मुरली में था कि नहीं था? प्राणों के प्राण, प्राणों की प्राण, प्राणों के प्राण। क्या लिखेंगे आगे? हे मेरे प्राणनाथ, आगे मैं आपकी सजनी कटक से आपको एक पत्र लिख रही हूं। क्या लिखेंगे उसमें? आप मुझे याद भी नहीं करते हो, मैं तो आपको याद करती रहती हूं लेकिन आप मुझे याद ही नहीं करते हो। फिर बाबा को उधर से क्या जवाब आएगा? बाबा कहेंगे मैं तो तुमको रोज याद करता हूं, मैं तो तुमको रोज 4 पेज का लेटर लिखता हूं, तुम ही मुझे लेटर नहीं लिखती हो, कैसी सजनी हो, और तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करती हो, मोबाइल देखती रहती हो, व्हाट्सएप देखती रहती हो, और तुम मुझे ठगती रहती हो, फिर बोलती हो मुझे याद नहीं करती, आपका फोन बिजी रहता है, फोन फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं। तो बाबा को पत्र लिखना, ये हम थोड़ा कम करते हैं। ये परिपाटी पत्र लिखने की सबसे बेस्ट योग है, सहज योग का तरीका, बाबा को पत्र लिखना। और कौन सा पत्र? दिल का गहराई से। पहले हम लिखते थे, अभी भी कभी कभी लिखते हैं, तो पत्र लिखने का बड़ा मजा है और वो बहुत शक्तिशाली योग है। ऐसा मन एकाग्र हो जाता है, सारी शक्तियां एकाग्र हो जाती है उसमें, मन कहीं जाता ही नहीं है। और जिस संबंध से पत्र लिखेंगे वो संबंध संसार का संबंध खींचेगा नहीं। नहीं तो अगर संबंधों से दूरी बना रखते हैं तो संबंध बार बार हमको खींचते हैं। तो बाबा को पत्र लिखना, तो अभी तो हमने शुरुआत की थी, आगे क्या लिखेंगे? कह रहा हो ब्रह्मा, नहीं अभी डायरेक्ट लिखो, मेरा मीठा बाबा तो बहुत कर दिया, अभी साजन, आप मेरे कितने मीठे साजन हो। और क्या लिखेंगे? दिल करता मैं आपको कच्चा खा जाऊं। दादी जानकी जी कहते थे कि नहीं कहते थे? क्लास सबने तो सुनी होगी ना, है ना? तो ये एक योग का तरीका है, बाबा को मुख में रख लेने का, है ना? जब योग में बैठते हैं तो मुख में बाबा को रख के चूसते रहने का एकदम। हमारा एक भाइया है योग लगाते, उसको अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगता है उसका मुख ना हिलता ही रहता है, तो हम उसको जानबूझ के छेड़ते हैं बाद में। और सचमुच अच्छा योग करता है वो, हमने देखा, बहुत मेहनती है वो, है जी। हाँ, तो ऐसे अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, है ना? तो बाबा को ऐसे पत्ता लिखना है। और क्या लिखेंगे आगे? प्राणनाथ तो हो गया, हे मेरे प्राणनाथ, आपने मेरे प्राण ले लिए, ऐसे हैं जी, आपके स्टीमर में बैठ गए। हाँ, और क्या लिखेंगे? सुनाओ अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना, हैं जी। आप बाबा, आप स्वीट के पहाड़ हो, दिल के, और मैं एक चींटी हूं, है ना? और चींटियां मिठाई को ज्यादा खाती है, हाँ जी, हप कर लेंगे। हाँ, तो बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, क्योंकि अभी ऐसी बातें हम कम करते हैं आजकल, इसलिए ना चेहरा जो एक रौनक रहनी चाहिए, एक जो खुशी आनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देते, नहीं तो शुष्क चेहरे रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, वो चेहरा भी वैसा रहता है, और उसका उल्टा सुर जैसे बाहर निकलेंगे, थोड़ा किसी ने बोला ना, ऐसा चेहरा रहता है। तो हमारे जीवन में रमणीकता कम दिखाई दे रही है। बाबा इतना मीठा है, इतना रोचक ज्ञान है, उसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो इस ज्ञान को हमको बड़ा सिंपल बनाना है, सहज बनाना है, जो हमारा दैनिक दिनचर्या, जो हम कर्मों में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उन संबंधों में ज्ञान को समा देना अपने आप को, ताकि हमको याद करना ना पड़े, वो स्वतः याद आए। और चीज वही होती है जो हमारे जीवन में नेचुरल होती है, वो हमको सहज लगती है। जो मुश्किल होती है वो सदाकाल नहीं होती है। जो हम सोमान का अभ्यास करते हैं, इसको भी हम रोचक तरीके से बना देना है। जैसे सर्वशक्तिवान है तो मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, परमात्म शक्तियां पूरी मेरे शरीर में दौड़ रही हैं, मुझ सजनी के शरीर में दौड़ रही हैं। सजनी तो वैसे आत्मा है, लेकिन ये आत्मा का तो रथ है ना, बाबा के तेरे तन मन धन सब तेरा। अब है तो तन भी उसी का, मन भी उसी का ही है, तो परमात्म शक्तियां सारी मेरे शरीर में दौड़ रही हैं और मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से सराबोर हो गई हूं, चार्ज हो गई हूं, जैसे एक चमकती हुई मणि बन गई हूं, लाइट हाउस माइट हाउस बन गई हूं। बाबा ने उस साजन ने मुझ सजनी को इतना श्रृंगार कर दिया, इतना श्रृंगार कर दिया कि मेरी दृष्टि दूसरे की तरफ जा ही नहीं सकती। अगर जाती है तो जिस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी वो भी भगवान की पक्की सजनी बन जाएगी। और यहां एक और विशेषता है, संसार में तो अगर दूसरी कोई आ जाती है किसी के जीवन में तो सौतन हो जाती है, यहां तो बाबा को अगर कोई सजनी बना तो और ही खुश हो जाता है बाबा, और जो सजनी लेके जाते हैं वो भी खुश हो जाता है कि मैं एक सजनी और लेके आई हूं। कितनी कैसी रीति रस्म है यहाँ की, है ना। यहां तो जितना बाबा के बच्चे बनाते हैं उतना सारा बाबा और ही खुश हो जाता है। तो सजनी बनना भी है और औरों को भी बाबा की सजनी बनाना है। तो ऐसे बाबा के साथ संबंधों का मेल करना है, संबंधों को जोड़ना है, संबंधों से याद करना है, और संबंधों में रस है, क्योंकि सतयुग से लेकर हम कलयुग के अंत तक संबंधों में बंधे हुए हैं और संबंधों से छूट भी नहीं सकते हैं। ऊपर तो हम थोड़े समय तक जाएंगे, वापस तो फिर संबंधों में आना ही आना है, लेकिन संबंधों को हमको थोड़ा दिशा चेंज कर देनी है, उस लौकिकता में अलौकिकता समा जाए। जैसे घर में सभी रहते हैं तो अब घर में बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, काका चाचा मामा याद तो आएंगे, लेकिन हमारी मानसिकता अंदर से कैसे रहे कि पिताजी हैं ये भी बाबा का बच्चा है ना, काका ये भी बाबा का बच्चा है, चाचा ये भी बाबा का बच्चा है, ये पति है ये भी किसका है, बाबा का पति है, बाबा का बच्चा है, पत्नी, हाँ पत्नी बाबा की पत्नी है, तो वो ठीक है वो चल जाएगा, लेकिन पति है उसमें थोड़ा बोलने का, वो भी बाबा की पत्नी है। तो संबंधों से बाबा को याद करना है, बाबा से दोस्ती करनी है, उसको स्वयं प्रयोग करना है। जो बाबा कहते हैं मेरा आह्वान करो, मैं तो मदद करने के लिए बंधा हुआ हूं, तुम मेरा आह्वान करके तो देखो, दौड़ा चला ना होगा तो, संसार में भी ऐसे कहते हैं ना, तो बाबा का बार बार आह्वान करना है। तो अभी फिर से एक मिनट आह्वान करेंगे और ऐसे महसूस करेंगे जैसे बाबा का साजन का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझ सजनी को श्रृंगार रहे हैं। महसूस करो जैसे श्रृंगार रहे हैं, क्या श्रृंगार देखेंगे, 16 श्रृंगार, कौन कौन से, जैसे बाबा साजन मेरे सिर के ऊपर ताज पहना रहा है, पवित्रता का ताज, और मस्तक में समृद्धि का तिलक, आंखों में बाबा काजल लगा रहा है, आत्मिक दृष्टि का काजल वो साजन मेरी आंखों में लगा रहा है, होंठों पर परमात्मा मिलन की लिपस्टिक लगा रहा है, चेहरे पर रूहानियत का पाउडर लगा रहा है, वो साजन मुझे कंगन पहना रहा है पवित्रता के, वो साजन मुझ सजनी को गले में सोमान की माला वरमाला पहना रहा है, मैं उसकी सजनी हूं, संपूर्ण समर्पित हूं उसके समक्ष, मेरा सारा जीवन ऐसी सलोने साजन के लिए है जिस साजन ने मेरे जीवन का पूरा ठेका ले लिया है, मेरे जीवन को संवार दिया है, मेरे जीवन को धन्य धन्य कर दिया है, मैं कितनी सौभाग्यशाली सजनी हूं जो स्वयं भगवान साजन बनकर मेरे सामने आया है, जो स्वयं मेरा श्रृंगार कर रहा है, वो सलोना साजन मेरे कानों में कुंडल पहना रहा है, एक से ही सुनूं, एक ईश्वरीय ज्ञान ही सुनूं ऐसे कुंडल पहना रहा है। वो साजन मेरे नाक में नथनी पहना रहा है। एक व्रता की नथनी, दृढ़ता की नथनी, उस साजन का वरदानी हाथ सिर पर महसूस होते ही जैसे मैं संपूर्ण निर्विकारी हो गई हूं। उसने मेरा कायाकल्प कर दिया है। जैसे वो संपूर्ण प्योर है, पवित्र है, निर्विकारी है, मैं भी उसी के समान संपूर्ण प्योर हूं, पवित्र हूं, निर्विकारी हूं। जैसे वो संसार को देखता है, मैं भी उसी दृष्टि से संसार को देख रही हूं। संसार का कल्याण करने के लिए मेरी दृष्टि में परमात्म शक्तियां, परमात्म प्योरिटी समा गई है। आत्मिक दृष्टि का काजल पहनाकर साजन ने मुझे धन्य धन्य कर दिया, जो मुझ आत्मा को, सजनी को, सबको आत्मा देखने की शक्ति प्रदान कर दी, सबको देह और देही का अलग अलग अनुभव कराने के लिए मेरे में बल भर दिया। ऐसा सुंदर साजन, ऐसा प्यारा साजन, जिसने मेरा जीवन खुशियों से भरपूर कर दिया। मैं कितनी सौभाग्यशाली सजनी हूं। ओम शांति। तो ऐसे घर में भी अनुभव करने का, संबंधों से बाबा को याद करने का, तो मुरली का मंथन करना है। बहुत सारे बिखरे होते पॉइंट, उनको एकत्रित करना है। एक होता है 8-10 पॉइंट बुद्धि के, बुद्धि में उनको घुमाते रहना। एक है कोई एक ही पॉइंट लेकर उस पर मास्टरी कर ले, हम एक संबंध के ऊपर मास्टरी। और अभी भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का बहुत मार्जिन है, सभी को बहुत मार्जिन है, लेकिन इसमें हमको थोड़ा एटीट्यूड अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े परिवार है, सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने होते हैं, लेकिन सबसे हमको सीखना है। किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी की अगर कमी दिखाई दे दे तो उसको संभाल लेना है। बुजुर्गों का काम क्या होता है, वानप्रस्थियों का काम क्या होता है, अपनी घर की बातों को बाहर फैलाते नहीं है, संभाल लेते हैं। तो ये हम सबका फर्ज है, चाहे कोई बहन है या भाई है, नया है पुराना है, घर में रहते हैं, धारणाओं में कमजोर हैं, कोई बात नहीं, संभालो उसको अपने अंदर में। अब घर में है, रहते हैं हम, परिवार लौकिक परिवार है, कोई छोटा बच्चा है, बेचारे को समझ नहीं है या उसकी बुद्धि थोड़ी कम है, तो मां को पालना तो करनी पड़ती है ना, मां उसको फेंक देगी क्या? तो हम बाबा के बच्चे हैं, किसी में ज्यादा विशेषताएं हैं, किसी में कम है, किसी में कमी है, किसी में बेचारे में चलने की ताकत नहीं है, कोई बेचारा बार बार धारणों में फेल हो रहा है, लेकिन हमको छोड़ना नहीं किसी को भी। बाबा ने कहा अगर एक भी बच्चा यहां से जाता है तो उसके जवाबदार हम हैं, क्योंकि हर एक के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। हम एक किले की, एक किला है और उसे, उस किले की हम सब ईंटें हैं। एक भी अगर ईंट कमजोर होगी तो पूरा किला ध्वस्त हो सकता है। तो इतने बड़े संसार का निर्माण करना है, उसमें हर आत्मा का हमारा विशेष पार्ट है। साधारण आत्मा नहीं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को साधारणता से ग्रसित करते रहते हैं। हम अपने आप को साधारण ही समझते हैं। क्या समझते हैं? ज्ञान तो मुझे याद नहीं रहता है, योग तो मेरा लगता नहीं है, मुरली के पॉइंट तो याद नहीं रहते हैं, धारणाएं तो मेरी होती नहीं है, नींद मुझे बहुत आती रहती है। इन्हीं बातों में हम अपने मन बुद्धि को उलझा के रखते हैं। इनसे बाहर निकलने का है, ये हमारे संस्कार नहीं है। अपने को हमेशा शक्तिशाली ज्ञान बिंदुओं से सजा के रखना है और उसमें अपने आप को चिंतन करने की एक नई आदत डालने के लिए रोज 4 पेज की मुरली है। सारे मुरली याद नहीं आती, जरूरी नहीं है, कोई भी एक पॉइंट देखो, क्योंकि लौकिक संबंधों के तो सब हम अनुभवी है। जैसे एक संबंध का बताया अभी साजन का, अभी दोस्ती के भी हम अनुभवी है, पिता के भी अनुभवी हैं, घर में है माता के भी अनुभव हैं, तो बाबा को अपना पिता बनाओ। पिता बनाएंगे तो क्या उसके साथ बाबा के साथ रुरुहन करेंगे कि बाबा आपने मेरा पिता बनकर कितना मुझे धन्य धन्य कर दिया, वो संसार वाला पिता तो मुझे विकारों में धकेल रहा था, मार कुटाई करता था, आपने तो मुझे बचा लिया। बाबा ने कल कहा ना था सौभाग्यशाली कौन है, कल की मुरली में था। हाँ जी हाँ, वो तो अलग, वो बाप टीचर सतगुरु तीनों कंबाइंड है, अगर ये याद रहे तो सदा खुशी का पारा चढ़ रहेगा, ये तो मीठे बच्चे में था। लेकिन सौभाग्यशाली कौन है, हाँ जी, जो ब्राह्मण है और काल की मुरली में था, हाँ जी, जो बुद्धि का रेस करते हैं और फराक दिल है, जो हाँ बाबा ने कहा जिनको बहुत मार पड़ती है, कौन है वो? अच्छा किस किसने मार खाई है? जिसने मार नहीं गई वो सौभाग्यशाली नहीं है फिर? क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि वो बाबा को ज्यादा याद करे। बाबा ने कहा था जिनको ज्यादा सितम सहन करने पड़ते हैं वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि विकर्म विनाश हो गए उनके, मार खा के आ गई। तो बाबा के, बाबा को अलग अलग संबंधों से याद करना है। बाबा ने हमारा पिता बनकर हमको क्या से क्या बना दिया, अपनी सारी संपत्ति हमको लुटा दी। संसार वाला पिता तो क्या करता है, विकारों में धकेल देता है, अपनी इच्छाएं रखता है कि मेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बुजुर्ग होगा तो मेरे बच्चे मेरी देख रेख करें। लेकिन बाबा कहते तुमने मुझे क्या दिया, पुराना तन, पुराना धन, एक काला धन है ना, पुराना तन और मन भी मैला है, अभी काल की मुरली में आएगा शायद, है ना, धक्के से शरीर चलाते हो, दवाइयां खाते रहते हो, सड़ा हुआ शरीर है जो भगवान के आगे अर्पित कर दिया है, तो ये बाबा ने स्वीकार कर लिया है, तो कितना बड़ा सौभाग्य हम सब बच्चों का। तो कहीं ना कहीं हम अपने सौभाग्य का सिमरन नहीं करते हैं, हम सिमरन करते हैं किसका, जो हमारे साथ छोटी मोटी बातें बीती हुई बातें हैं। अरे वही छोड़ दो, तो जो बीत गई उसको क्यों पकड़ रहे हैं, वो दोबारा वापस तो आएंगी नहीं, आएंगी तो 5000 साल बाद आएंगी, अभी थोड़ा नहीं आएंगी वो। तो अब हमको पास वाली बातों को पकड़ के नहीं रखना है, प्रेजेंट मोमेंट जीना है, क्योंकि अभी का श्वास ही हमारे पास में है। अब ये दरवाजा भी क्रॉस करेंगे वो भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अगर अभी हम यहां से चले जाएं ऊपर सीधा तो सारे के सारे कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, यहीं बैठे बैठे देख रहेंगे, जैसे कोई दरवाजा खुलेगा हिला के देखेंगे तो हिल नहीं रहा है, कहां चले गए सारे। तो ऐसे भी तो टाइम आएगा आएगा जब सबको जाना, तो बाबा ने कहा ना नाटक तो पूरा हुआ है। तो हमको ऐसी सौभाग्यशाली बातों का चिंतन करना है, हम कम सौभाग्यशाली नहीं है, सौभाग्य तो हमारा कदम कदम में है, श्वासों श्वास सौभाग्य है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको विस्मृत करते हैं। दो ही बातों पर हमारा पुरुषार्थ निर्धारित करता है, स्मृति और विस्मृति। जब जब हमको ज्ञान की स्मृति रहती है तो जीवन शक्तिशाली बना रहता है, जैसे हम विस्मृत होते हैं तो क्या होता है, कमजोर, शक्तिहीन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, अनेक प्रकार के विकारों की दीवारें हमारे सामने खड़ी हो जाती है, या फिर जो पिछली बातें हैं किसने हमारे से दुर्व्यवहार किया हुआ है तो बदला लेने की भावना आ जाएगी, अपमान किया हुआ है तो अपमान उसका बदला करने के लिए हम षड्यंत्रकारी संकल्पों की रचना रचेंगे, तब कहां से हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, तब कहां से संकल्प चलते हैं, फिर कहते हैं हमारा मन तो लगता नहीं है, तो ऐसी बातें में क्यों लग रहा है हमारा मन। शक्तियां तो हमारे में सारी हैं, संपूर्णता तो अंदर में समाई हुई है, लेकिन उस संपूर्णता को हमको उस सीट पर हमको सेट रहना है। तो बाबा कहते हैं हमेशा तख्तनशीन बनकर रहो, आय की मुरली में भी था ना तख्तनशीन, क्या था तख्तनशीन के बारे में, स्कॉलरशिप लेनी है तो तख्तनशीन बनकर रहो, तख्त को छोड़ना नहीं है, लेकिन अब तख्त छोड़ना पड़ेगा, टाइम पूरा हो गया। ओम शांति।
नहीं कुछ चाहे अब जब से तुमको जा... तू ही मेरा खजाना है।